आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं शशि कुमार। अमेरिकी राजनीति में हो रहे बदलाव सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं होते हैं, उसका असर समूची दुनिया पर होता है। अमेरिका की चाहे अमेरिका फर्स्ट जैसी नीतियां हो या अन्य देशों के साथ उसका बढ़ता रणनीतिक तनाव, अमेरिकी भू राजनीतिक फैसलों का असर भारत, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ रह रहे प्रवासी समुदायों पर भी पड़ रहा है। अमेरिकी राजनीति और उसकी विदेश नीति के इन्हीं जटिल समीकरणों को समझने के लिए हमने बात की मेलबर्न यूनिवर्सिटी के सीनियर लेक्चरर और एशियन पॉलिटिक्स के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप तनेजा से। डॉक्टर प्रदीप तनेजा जी, SBS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद शशि
जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हाल के सालों में अमेरिकी विदेश नीति में जो बदलाव दिख रहा है, खासकर ट्रंप सरकार के आने के बाद, उसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, जब से ये ट्रंप सरकार दोबारा से आई है, मतलब पिछले साल जनवरी 20 से ये जब व्हाइट हाउस में प्रवेश किया है दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप जी ने, तब से इन्होंने कहा है कि इनकी जो नीति है वो अमेरिका फर्स्ट, मतलब पहले अमेरिका करके उनका जो मुख्य विदेश नीति का सिद्धांत है वो ये है कि वो जो भी करेंगे विदेश नीति में, कूटनीति में, उसमें सबसे पहले वो अमेरिका के हित को रखेंगे। अब इसमें कोई ये नई बात नहीं है, क्योंकि सभी देशों की कोशिश यही रहती है कि उनकी विदेश नीति जो है वो उनके राष्ट्रहित को आगे बढ़ाए, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप साहब अपनी ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें इन्होंने जो विदेश नीति के जो संस्थाएं हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, और दूसरे तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने अपनी नीति में इन सब को बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश की है, और ये अपनी नीति को इस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जिसकी मतलब जिसके पास ज्यादा शक्ति है वही शक्तिशाली है और उसी की जो है धौंस चलेगी। तो अब जिस तरह से अभी जो इन्होंने वेनेजुएला में जिस तरह से वेनेजुएला के ऊपर एक मिलिट्री सेना का एक हमला करके वहां के राष्ट्रपति को एक तरह से कैप्चर करके न्यूयॉर्क ले गए हैं, तो ये तो देखिए, अगर कोई छोटा मुल्क होता, छोटा देश होता, ऐसा करता तो दुनिया उसको स्वीकार नहीं करती। बल्कि छोटा देश ही नहीं, कोई भारत जैसा बड़ा देश भी अगर ऐसा करेगा या चीन जैसा देश ऐसा करेगा तो उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होती। लेकिन इन्होंने इसको किया और हमने देखा कि चीन, रूस और ईरान वगैरह को छोड़कर बहुत कम देशों ने इनकी इस कदम की आलोचना की है। तो जहां तक राष्ट्रहित का सवाल है, अमेरिका के हित का सवाल है, ये कोई नई बात नहीं है। सभी देशों की कोशिश यही होती है कि वो अपने राष्ट्रहित को आगे बढ़ाएं। लेकिन जिस तरह से ये सेना को, अपनी शक्ति को पूरी तरह से यूज कर रहे हैं, ये एक नई चीज है।
भारत को लेकर ट्रंप प्रशासन की क्या नीति है? चीन को संतुलित करने के लिए भारत की भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, भारत के साथ पिछले 25 साल से अगर आप लेंगे तो अमेरिका और भारत के संबंधों में काफी बदलाव आया है। पिछले 25 सालों में अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति हुए हैं, जॉर्ज बुश से लेकर ओबामा साहब थे, उसके बाद ट्रंप साहब दोबारा से आए, ये पहली बार जब आए थे सत्ता में, उसके बाद जो बाइडेन आए, सभी एडमिनिस्ट्रेशन ने, सभी प्रशासनों ने भारत के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की कोशिश की है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि भारत की जिस तरह से ट्रंप साहब ने आलोचना की है जब से सत्ता में आए हैं, और भारत को उनके मतलब ट्रम्प साहब के अलावा उनके जो प्रशासन में और भी कई सीनियर लोगों पर मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उन्होंने भी ऐसी बातें कही हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि जो रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, वो युद्ध उस युद्ध के पीछे भी भारत है, क्योंकि भारत रूस का तेल खरीदता है और तेल खरीदने से उसकी जो आमदनी होती है उससे रूस फिर हथियार खरीदता है और वो अपनी वॉर को, अपने युद्ध को वहां यूक्रेन के खिलाफ चला रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं, और जैसे ट्रंप साहब ने पिछले साल अप्रैल में भारत के ऊपर वो टैरिफ लगाए, पहले 25%, उसके बाद उसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया, तो ये कोई एक मतलब मित्र देश का रवैया नहीं है। तो भारत और अमेरिका के साथ पिछले 25 साल से संबंध काफी अच्छे बने थे, लेकिन अभी देखिए उन संबंधों में थोड़ा ठंडाई आई है कि अमेरिका की, देखिए अमेरिका की नीति के भारत में जो आलोचक हैं काफी समय से रहे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी पिछले 20-25 साल में लोग ये स्वीकार करने लगे थे कि अमेरिका और भारत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, अच्छे मित्र बन सकते हैं। लेकिन अब ट्रम्प साहब ने जो कदम उठाए हैं, जैसे टैरिफ लगाए हैं या भारत की सीधी आलोचना की है, उससे लोगों को ये मतलब लगने लगा है कि अमेरिका कोई रिलायबल पार्टनर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब भरोसेमंद पार्टनर जो है वो नहीं हो सकता।
जी, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जैसे मिडिल पावर देश के लिए अमेरिका की बदलती विदेश नीति को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, दूसरे विश्व युद्ध से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संबंध, खास तौर से डिफेंस के मामले में, रक्षा के मामले में, काफी काफी स्ट्रांग हैं, काफी मजबूत हैं, और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का एक ट्रीटी एलाय है, मतलब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में एक संधि है, एक ट्रीटी है, उसको बोलते हैं एंजस ट्रीटी। और एंजस ट्रीटी जो है वो बायलेटरल ट्रीटी, बायलेटरल क्या मतलब, उसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, इस मतलब इसलिए ट्राइलेटरल ट्रीटी है वो। एंजस जो संधि है उसके हिसाब से अगर दोनों में से किसी देश के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के ऊपर कोई संकट आता है, तो वो आपस में एक दूसरे से उसके बारे में सलाह करेंगे, मतलब बातचीत करेंगे। उसका जो जो गहरा मतलब यही है कि वो दोनों एक दूसरे की मदद के लिए आएंगे। तो अमेरिका की एशिया पैसिफिक रीजन में कई इस तरह की ट्रीटीज हैं, उनकी जापान के साथ भी ऐसी ही ट्रीटी है, कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका, जिसको कहते हैं हम लोग, एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण देश है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया कोई जो भी कदम उठाता है, जैसे भी वेनेजुएला वाली बात हुई, तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार का जो स्टेटमेंट था वो काफी कंट्रोल था, रेस्ट्रेंड था, उन्होंने कोई उसकी अमेरिका की आलोचना नहीं की। उन्होंने कहा भाई डायलॉग होना चाहिए और इस समस्या का समाधान जो है वो डायलॉग के थ्रू होना चाहिए, बातचीत के साथ होना चाहिए। उसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया डिफेंस में, ऑस्ट्रेलिया अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है, और यहाँ पर अमेरिकन, देखिए मरीन्स भी हैं हमारे, 2000 के आसपास अमेरिकन मरीन्स रहते हैं, वो एशिया पैसिफिक या आप उसको इंडो पैसिफिक चाहें तो कहें, उसमें उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तरह से मजबूरी है कि अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बना के रखने हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का ये जो अलायंस है, ये जो संधि है, ये देखिए काफी पुरानी हो चुकी है दूसरे विश्व युद्ध के बाद से। तो ऑस्ट्रेलिया की उसमें कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन अगर आप निजी तौर पर आप बात करें ऑस्ट्रेलियन राजनीतिक से, तो उनके विचार थोड़े अलग होते हैं, लेकिन सरकार की जो नीति है, चाहे वो लिबरल पार्टी की सरकार हो, कोलिशन की सरकार हो, चाहे लेबर पार्टी की सरकार हो, दोनों की कोशिश यही रहती है कि अमेरिका के साथ संबंध अच्छे बने रहे, और ट्रंप के आने के बाद भी वो वैसा ही रहेगा। बल्कि आप देखिए कि ट्रंप ने जब टैरिफ लगाए हैं सारे देशों के ऊपर, सबसे कम टैरिफ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लगा है, 10% टैरिफ है, 10% टैरिफ लगा है। तो ऑस्ट्रेलियन सरकार कहती है क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप है, इसलिए हमारे पास जो, हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है वो भी कम लगाया गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स की, और ट्रंप साहब की जो नीतियां हैं उससे उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, इन दोनों देशों के बीच जो संबंध है उन पर।
और क्या ऑस्ट्रेलिया को अपनी सुरक्षा और विदेश नीति में ज्यादा आत्मनिर्भर होना पड़ेगा?
ऑस्ट्रेलिया देखिए एक कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र एक ऐसा देश है जो एक राष्ट्र होने के अलावा एक कॉन्टिनेंट भी है, एक महाद्वीप भी है। तो ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना रक्षा के मामले में तो थोड़ा मुश्किल है। उसमें तो ऑस्ट्रेलिया की दोनों जो मुख्य राजनीतिक दल हैं दोनों यही चाहते हैं कि अमेरिका के साथ जो अलायंस है वो बना रहे, लेकिन अलायंस के अंदर ये अभी भी मुझे लगता है गुंजाइश है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी शक्ति को और बढ़ाए, ऑस्ट्रेलिया अपना जो रक्षा बजट है, डिफेंस बजट है, उसको बढ़ाए। और ऑस्ट्रेलिया को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है जैसे, बजाय इसके कि ऑस्ट्रेलिया ज्यादातर हथियारों का आयात करे अमेरिका से या किसी और देश से, ऑस्ट्रेलिया को इस मामले में भी अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो अब यूरोप में आप देखिए, यूरोप में ऑस्ट्रेलिया से भी छोटे देश हैं जिनकी आबादी ऑस्ट्रेलिया से कम है लेकिन उनकी डिफेंस इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग है। तो इस मामले में ऑस्ट्रेलिया को और कोशिश करनी चाहिए, इसीलिए मुझे लगता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया के पास काफी गुंजाइश है इसमें अपने आप को, जो अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, जो क्षमता है, उसको बढ़ाने की। लेकिन जहां तक आत्मनिर्भरता का सवाल है का जो सवाल है उसमें मुझे नहीं लगता कि अभी ऑस्ट्रेलिया जो अमेरिका के साथ जो ऑस्ट्रेलिया का अलायंस है उसको छोड़ पाएगा।
जियोपॉलिटिकल तनाव क्या प्रवासियों की पहचान, सुरक्षा या अवसरों को प्रभावित कर सकता है?
ट्रंप सरकार ने जो कदम उठाए हैं जैसे भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं या H-1B वीजा वगैरह जो है उसको कम करने की कोशिश की है, तो उसका प्रभाव कुछ ऑस्ट्रेलिया में जो प्रवासी भारतीय रहते हैं, जो अभी तक भारतीय नागरिक हैं, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, वो अगर अमेरिका में जाके काम करना चाहते हैं तो उनको भारतीय नागरिक की हैसियत से ही देखा जाएगा, ना कि उनको ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट की हैसियत से। तो उनके ऊपर वही फर्क पड़ेगा जो कि भारत में रहने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स वगैरह हैं जैसे, वो अगर अमेरिका जाते हैं तो उन पर अगर कोई अंकुश लगाया जा रहा है तो वो अंकुश उनके ऊपर भी लगेगा जो लोग भारतीय नागरिक जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। दूसरा आप देखें, अगर राजनीतिक या जियोपॉलिटिकल अस्थिरता कहीं होती है तो उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर फर्क पड़ सकता है, और वो जो प्रभाव है वो फिर जो प्रवासी लोग हैं, चाहे भारतीय हों या किसी और देश से आए हुए हों, उनके ऊपर भी पड़ेगा।
जी, ट्रंप की नीतियों से इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर क्या असर पड़ रहा है?
देखिए, ट्रंप साहब की अभी आपने सुना होगा, ट्रंप अमेरिकन सरकार ने अभी अपनी नई नेशनल स्ट्रेटजी इशू करी थी, वो उसके ऊपर काफी चर्चा हुई है एकेडमिक सर्कल्स में, और उसमें उन्होंने कहा है कि उनका ध्यान अब पूरी तरह से जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उस पर ध्यान ज्यादा रहेगा। तो अभी जो वेनेजुएला पे उन्होंने जो अभी कार्यवाही की है उसको भी हम उसी नजर से देख सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है उनका कहना है कि चीन, रूस या ईरान जैसी ताकतें जो हैं, इनका दक्षिण अमेरिका में काफी प्रभाव बढ़ रहा था तो हम उसको कम करेंगे। उनके वहां पर इन्वेस्टमेंट्स बहुत बढ़ रहे थे, उनका व्यापार वहां से बहुत बढ़ रहा था, और इन्होंने काफी खुल्लम खुल्ला कहा है कि हम इन सब देशों के जो बड़ी दूसरी ताकतें हैं जैसे रूस या चीन, हम इनके प्रभाव को वहां पर कम करने की कोशिश करेंगे और अपना प्रभाव वहां पर बढ़ाएंगे। तो उन्होंने ये एक, उसको आजकल कहा जा रहा है डनरो डॉक्ट्रिन, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का डॉक्ट्रिन। वो एक्चुअली ये 1823 में अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, जेम्स मनरो ने 1823 में कहा था कि हम अब जो यूरोप की जो कॉलोनियल पावर्स थी, चाहे वो ब्रिटेन था या पुर्तगाल था या स्पेन था या फ्रांस था, इनको हम वहां दक्षिण अमेरिका में अब आगे अपना जो साम्राज्य है उसको नहीं बढ़ाने देंगे। तो ये देखिए 200 साल पहले की बात है, लेकिन अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अब जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, मतलब नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, वहां पर वो वही सिद्धांत फिर से लागू करेंगे, और जो दूसरी बाहर की ताकतें हैं उनको वहां पर अपना प्रभाव नहीं बढ़ाने देंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है अमेरिका की पॉलिसी में। उससे क्या हुआ है कि उनका ध्यान अब उस तरफ ज्यादा चला गया है, इधर इंडो पैसिफिक में कम हो गया है। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी में एक कहा जाता है स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी पुरानी कॉन्सेप्ट है। तो ये पुरानी कॉन्सेप्ट जो है ये साम्राज्यवादी दिनों में ज्यादा होती थी, जब देखिए ब्रिटेन का अपना साम्राज्य था, फ्रांस का अपना साम्राज्य था, जापान ने इधर अपना साम्राज्य बनाया था, उन दिनों ऐसी बातें होती थी। लेकिन जब से जो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई 1945 में, उसके बाद से इस तरह की राजनीति बहुत कम हो गई थी। लेकिन अब दोबारा से वो कह रहे हैं कि हम वहां पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएंगे। इसका मतलब है कि रूस अपने एरिया में अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएगा और इधर चीन एशिया में अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएगा। तो उससे फिर लगता है कि ट्रंप साहब की सरकार जो है वो ये कह रही है कि अमेरिका का जो मुख्य ध्यान है वो सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर ही रहेगा और बाकी जो ताकतें हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे इंडिया हो, वो अपने अपने क्षेत्रों में अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना सकती हैं।
ट्रंप की नीतियों से आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के समक्ष क्या चुनौतियां आ सकती हैं?
देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पिछले 10-15 सालों में बहुत अच्छे हो गए हैं और उसमें क्वाड भी शामिल है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो भी शामिल है, जिसमें कि जापान और अमेरिका भी उसके सदस्य हैं। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो भारत के साथ संबंध है उनको काफी लोग एक नजर से देखने लगे थे। एक नजर से देखने का मतलब यह है कि वो ऑस्ट्रेलिया ने जब भारत के साथ अपने संबंध बढ़ाए हैं तो कुछ लोगों का कहना था कि क्योंकि अमेरिका और इंडिया के संबंध अच्छे हो गए हैं तो उसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के संबंध भी अच्छे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे एक और कारण है। वो कारण जो यह है कि ऑस्ट्रेलियन सरकार ये चाहती है कि अमेरिका के अलावा जो अलग दूसरी दुनिया की ताकतें हैं, चाहे वो जापान है चाहे इंडिया है, उनके साथ भी अच्छे आर्थिक और रक्षा से संबंधित संबंध हैं, उनको बढ़ाया जाए ताकि धीरे धीरे अमेरिका के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम किया जा सके। तो अगर आप उस नजरिए से इसको देखते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को, तो चाहे भारत और अमेरिका के संबंधों में काफी मतलब जो अभी गिरावट आई है कुछ महीनों में, उसका ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं उनका एक अपना एक लॉजिक बन गया है और इन संबंधों में काफी आप आगे देखेंगे इनमें काफी आगे भी काफी मतलब सुदृढ़ होंगे ये संबंध।
जी, थैंक यू सर। प्रदीप तनेजा जी, SBS हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू शशि जी।
तो अमेरिकी राजनीति में हो रहे ये बदलाव केवल वैश्विक सत्ता संतुलन का मामला नहीं है, बल्कि ये फैसले सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रवासी समुदायों के भविष्य से भी सीधे जुड़े हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अब भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए संतुलन बनाना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसी के साथ शशि कुमार को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए SBS हिंदी। आपको बता दूं कि इस बातचीत में प्रस्तुत की गई राय व्यक्ति विशेष के निजी हैं। SBS ना तो इससे सहमत है और न ही असहमत।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।